बस ईमान लाना समझ के, शौरी ईमान की बात हो रही है, सिर्फ जुबानी बातें नहीं, शौरी ईमान, इसके बारे में सवाल होगा। और वो बगैर समझे नहीं हो सकता कि आप ईमान लेकर आ जाए, क्योंकि तो वो शौरी नहीं होगा फिर। इसीलिए देखे ना, जो शौरी तौर पे ईमान लाते हैं फिर वो मुसलमान हो जाते हैं, उनकी जिंदगियां ही बदल जाती हैं। शौरी ईमान है ना, वो हम वहीं के वहीं हैं जब से पैदा हुए, हमने शौरी ईमान ही नहीं लेकर आए, समझा ही नहीं। जो समझने लगता है उसकी तो दिल पे ये कुरान उतरता है, तो इसका सवाल होना है। और फिर इसमें अमल किया कि नहीं, ये भी सवाल होगा। हाँ जी, अमल कितना किया? नहीं, अमल तो बहुत मुश्किल है, वो नहीं हमसे होता। ये जवाब देना, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि सवाल किए जाओगे। हम तो अभी इसी बहस में लगे हुए ना, हमारे यहाँ अक्सर लोग ये सवाल करते, ये फर्ज है, ये सीखना फर्ज है। नहीं, जो पांच अरकान है इस्लाम के, उनमें तो कहीं पे भी नहीं है कि कुरान पढ़ा जाए। अच्छा, अल्लाह पर ईमान लेकर आया तो उसके कलाम पे ईमान नहीं लाओगे? और क्या हर चीज वो पांच अरकान के अंदर ही है? अल्लाह ताला ने तो सच बोलने को भी फरमाया, तो झूठ बोला करोगे, वो पांच अरकान में से तो नहीं है सच बोलना। तो ये कैसी जहालत की बातें, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपनी आंखों से खुद पढ़ लें। ये देखें, फसोफतुसअलून, इसके बारे में सवाल किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये एक नियमत दी है, इसके बारे में वो पूछेगा अमल किया था या नहीं। अच्छा चलो भी, अमल भी कर लिया, अगला सवाल क्या है? यार पैगंबर तो नहीं आने थे? पैगंबर तुम्हें एक काम देके गए थे, इस कुरान में भी ये काम लिखा हुआ है, या तुम्हें उम्मत वसत बना के उठाया गया, अगर लोगों को तुम मारूफ की हुक्म दो और मुनकर से रोको, तो ये तुमने अपना फरीजा अंजाम दिया? ये कुरान को आगे पहुंचाने का फरीजा ये अंजाम दिया, इसको आगे पहुंचाया, इसके लिए को कोशिश की, कहीं भूस लगाते, लोगों को बुलाते, आओ कुरान की तरफ, आओ कुरान की मैं दावत देती हूँ आपको। तुमने हर चीज की, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कितनी तरह की बातें करते हैं, झूठ भी मिलाते हैं, सच भी धोखा देते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी ऐसी करते हैं, ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं, ऐसे चीजें करते हैं कि बस हमारी चीज बिक जाए। कुरान के बारे में तो हर खैर की बात सच है, लेकिन तुम इसको लेके नहीं कभी खड़े हुए। हमें तो आता ही नहीं ये काम, हमें आता ही नहीं, हमें बोलना भी नहीं आता, हमें कुछ करना भी नहीं आता, लिहाजा ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी पूछा जाएगा। आगे पहुंचाया, ये पांच हकूक हैं इस कुरान के, इसके ऊपर ईमान लाना, इसको समझना, इसके ऊपर अमल करना, इसको आगे तक पहुंचाना, सीखा समझा। तो ये कुरान हिफ्स करने के लिए नहीं आया, ये अल्लाह ताला ने नहीं सवाल करना कि आपने हिफ्स किया। हिफ्स इसलिए हम करते हैं, हमें वो बातें याद रहें, क्योंकि जो चीज जाहिर याद की भी है जहन में, तो वो अमल के वक्त वो याद आ जाएगी, वो कुरान में तो ये है, इसलिए हिफ्स करते हैं। इसलिए नहीं कि हिफ्स के तमगे ले लो, बस हाफिज बन गए, हाफिज फलां भी हाफिज, फलां भी हाफिज, और देखिए मेरा बच्चा हाफिज बन गए, और इसके ऊपर मैं मुझे बस बैज मिल जाए, मेरे इतने बच्चे हाफिज हैं। भाई हिफ्ज तो इसके अंदर है ही नहीं है, इसके हकूक में ये सवाल नहीं है, हिफ्ज किसने किया? हमारी दौड़ और हमारा जोर सारा किस पे? हिफ्ज कर लें, अबे मैं लोगों को फखर से बता सकूं मेरे बच्चे ने हिफ्ज किया था, इसकी पार्टी हो जाए और सारी जिंदगी के लिए हाफिज नाम चिपक जाए इसके साथ, हाफिज साहब कहलाएं, बस काम पूरा हो गया आपका, हिफ्ज कर लिया तो ना उसकी समझ है, ना उसके ऊपर कोई अमल है, ना उसको आगे फैलाने की कोई कोशिश है, उसको अगर किसी ने हिदायत का पैगाम ही है उसमें जो है वो समझा, तो हिफ्ज करने का क्या फायदा? तो तोते को हिफ्ज करा लें आप, वो तोते को भी सामने जो दो बातें करते रहे ना, वो ही रिपीट करता जाता है। तो हिफ्ज मकसद नहीं है, हिफ्ज सिर्फ इसलिए कि हमें अमल के वक्त याद रहे, हमें पता हो मेरे अल्लाह ने क्या फरमाया। तो ये एक नेमत है और इसकी कदर यही है कि हम इसके हकूक अदा करें। लेकिन ना आपके वालदेन, आप कहते हैं मैं जी इनकी बड़ी कदर करती हूँ, उनका हक अदा ही ना करें, उनको फेंका हुआ एक तरफ, उनकी बात ही नहीं सुनते, उनको कभी पूछते ही नहीं, तो आपने इनकी क्या कदर की। हम कहते हैं कुरान की हमारे दिल में बड़ी कदरों कीमत है, ये कदरों कीमत है कि इसको छोड़ रखा है, इसको पूछते ही नहीं है आप कभी, कोई काम करने से पहले इससे भी मशवरा करते हैं। तो कुरान क्या कहता है, मैं ये कारोबार हलाल है कि हराम है ये कुरान में देखूं, मैं ये खा सकती हूँ पी सकती हूँ कुरान में देखूं, मैं रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक करूं ये कुरान में देखूं, मैंने बातें कौन सी करनी है और कौन सी नहीं करनी ये कुरान में देखूं, मैंने लिबास कैसे पहनना है कैसे नहीं पहनना ये कुरान में देखूं, मैंने फकीरों मोहताजों के साथ कैसा सलूक करना है ये कुरान से मैं सीखूं। कभी इसके लिए खोलते, हमने तो छोड़ रखा है इसको साइड पे डाला हुआ। तो कयामत के दिन ये कुरान शिकायत करेगा इंसान की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कुरान तुम्हारे हक में हुज्जत बनेगा या खिलाफ हुज्जत बनेगा, दोनों में से एक जरूर होगा। या तो हक में बोलेगा, वहां पे खड़ा होके कहेगा अल्लाह ताला के सामने सिफारिश करेगा, या अल्लाह इसने मुझे इमाम बनाया, या अल्लाह ये इसने मेरे लिए वक्त निकाला, या अल्लाह ये मुझे पढ़ता था सीखता था समझता था। तो इसको पढ़ना, इसके ऊपर ईमान रखना, इसको सीखना, इसको समझना, इसको अमल में लेकर आना, इसको आगे पहुंचाना, इसके ऊपर वो सिफारिश करेगा इंसान की। इसके साथ कोई दो वक्त लग जाए हमारे तो हमें मुश्किल हो जाती है। टेस्ट क्यों देते हैं आप, वो टेस्ट इसीलिए तो देते हैं आप थोड़ी देर बैठ जाएं इसके साथ, इसलिए नहीं देते कि हमें को बहुत आपको कोई फेल करने का या पास करने का नंबर देने का हमें बहुत शौक है, वो तो एक जरिया है आपको बिठाने का, आप खोल लें जरा इसको। वैसे तो हम खोलेंगे नहीं, चलो इस वजह से ही खोल लें। अगर मेरे दिन के अंदर पहले 1 घंटा कुरान के साथ गुजरता था तो अब 3 घंटे गुजर रहे हैं, इस पे खुश नहीं है हम। हमें यह कि हो टेस्ट से हमारी बड़ी जान जाती है, टेस्ट ना दिया करो तब हम इस कुरान की तरफ आ जाएंगे। अगर वाकई हर्सुल आखिर और हर्सुल दुनिया हमने पढ़ा था ना, अगर वाकई हर्सुल आखिरा के लिए कर रहे होंगे, हर्सुल दुनिया के लिए कर रहे होंगे, तो मुझे परवाह भी ना होगी कि मेरे नंबर कितने हैं। मेरे हर्सुल आखिरा में मेरे नंबर बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक एक मिनट को गिनती हूं कि मेरे रब के पास ये लिखा जा रहा है, किसी को भी नहीं पता मैं अपने घर में कितनी देर लगा रही हूँ, मैं सारा दिन बैठी हुई हूँ, आधा दिन बैठी हूँ, 1 मिनट बैठी हूँ, मेरे रब को पता है मैं 1 मिनट बैठी हूँ और मेरे 25 नंबर आ गए, वो ज्यादा फायदेमंद है। या मैं 4 घंटे बैठी हूँ, मेरे 4 नंबर कट गए फिर भी, वो ज्यादा फायदेमंद है। खुद आप अकलमंद है बताइए, लेकिन फिर भी अफसोस ही नहीं जाता, हाय नंबर ऐसे हो गए हो, तो हमने तो पढ़ना ही नहीं, अब हमारे नंबर काट लेते हैं, हमने तो पढ़ना ही नहीं, हमें ए ग्रेड नहीं दिया, हमने पढ़ना ही नहीं, हमें हमें तो सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहे। तो अब हूं इससे खुदा के लिए, अब इतनी दफा कुरान पढ़ चुके, या हम अब 25वें पारे पे आ गए, अभी भी अगर हम वहीं खड़े हुए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, चीटिंग कर करके टेस्ट कर रहे हैं, जरा सा मैं देख लूं क्या है ये नंबर, क्या अल्लाह ताला इसका सवाल करेगा तुम्हारे कितने नंबर आते थे और सर्टिफिकेट तुम्हारे पास कितने हैं, लाओ दिखाओ सर्टिफिकेट का है या नहीं है, शील्ड है या नहीं है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं हमारे नंबर कम हो गए, हाय हाय अलग पिछली ग्रेजुएशन में हमें ये किया था तो हमने नहीं, अब इस तरह पढ़ना तो ऐसे हो गया, तो हमें अब ना बुलाना अगर हमें ऐसे किया तो, अगर हमें सर्टिफिकेट नहीं देना तो फिर हमसे ना बात करना, हमें बुलाएं भी ना। इतनी छोटी हकीर चीज के लिए हमने सौदा करा, कितने छोटे के ऊपर हम बिक गए, एक कागज का पुर्जा, एक सर्टिफिकेट, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर, खुदा के लिए इससे ऊपर उठें, अपनी सोच को अपने जहन को खोलें और हर्सुल आखिरा में क्या लगा रहे हैं वो देखें, ना कि नंबर नंबर नंबर, सिर्फ हर्षो दुनिया है, 4 लोग देख लेंगे ना कह देंगे आपको बहुत लायक है आप, उसके बाद क्या है। अगर ये कुरान अमल में ना आया, अगर हमने इसको समझा ना, अगर हमने इसको फैलाने की कोशिश ना की, हमसे ये सवाल होने हैं, हमने इसको पढ़ना ना सीखा सही, ये सवाल होगा। एक अल्लाह का कलाम है, उसके ये हकूक अदा ना किए, इसके ऊपर पूछ होगी, डिग्रियों नंबरों के ऊपर नहीं होगी। लेकिन हमारा दिमाग अभी तक उसी के अंदर, जिससे बात करो हाँ हम आ जाएंगे, लेकिन आप टेस्ट ना दिया करें, खुदा के खौफ करो। ये कहते हुए भी सोचो ये टेस्ट क्या चीज है, वो मुझे नहीं परवाह टेस्ट की, वो मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, बस मेरी जिंदगी लग जाए इस कुरान के साथ, मेरी आखिरी सांस तक ये कुरान मेरे साथ रहे, मुझे इसकी परवाह हो, तो मेरे से ये नेमत कहीं छूट ना जाए, अल्लाह मुझसे ये नेमत ले ना लेना इसकी फिक्र हो। हमारे तो दिमागों पर टेस्ट ही सवार हो गए, क्या हो गया है? मुझे अफसोस होता है जब मेरे स्टूडेंट ये बात करते, मैं इनको क्या सिखा रही हूँ, ये क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद यही होता है, अल्लाह हमने अपना काम कर दिया पहुंचाने का, बस इनको नहीं समझ आती तो क्या कर, आप सर खपा नहीं सकते। जब ये देखते हैं लोगों के कामों को मेरे पास आते हैं लोग आके मुझे बताते हैं, शायद उन लोगों को भी पता नहीं होता कहाँ कहाँ से शिकायतें मेरे पास आती हैं, आपके स्टूडेंट ये कर रहे थे, आपकी स्टूडेंट ने ऐसा किया, फिर यही होता है अल्लाह मैंने तो इनको ये नहीं सिखाया था, मैंने तो इनको ये नहीं बताया था, मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे उल्टे सीधे काम के जो सुन के भी दुख होता है, कब से पढ़ रहे हैं, कब से बताया जा रहा है, फिर भी वो ही चीजें, फिर भी वो काम आज तक ना छूटे। हाँ कोई बशरी कमजोरियां, ये नहीं कहते कुरान पढ़ के कोई बिल्कुल मुकम्मल हो जाता है, लेकिन ढिटाई के साथ वहीं के वहीं वो ही काम करते रहना, अल्लाह अकबर। तो याद रखें कयामत के दिन ये कुरान का सवाल होगा, और कुरान पढ़ने वालों से भी सवाल होगा, हम फारिग नहीं होगा कि हमसे तो सवाल होना नहीं, क्योंकि हम तो कोर्स में आ गए हैं, हमने इतने कोर्स कर लिए, सबसे सवाल होना, जिन्होंने इसको छोड़ा हुआ है उनसे भी होगा, जो इसको पढ़ रहे हैं उनसे भी होगा, जो इसके ऊपर अमल कर रहे हैं करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे भी होगा, कितना किया अमल और कैसा अमल किया और किसके लिए वो अमल किया, क्या वो अमल भी कहीं दुनिया के लिए ही तो नहीं था कि इसको दिखा दें इसमें शोहरत पा लें, ये अमल भी इसलिए कर रही हूं क्योंकि तो सारे मुझे नेक बीबी समझ लें, खूबसूरत की रात भी इसलिए हो रही ताकि लोग मेरी आवाज की तारीफ करें, हिजाब भी इसलिए लिया जा रहा है कि लोग मेरी तारीफें करें, दीदी देखो कितना कुरान पे अमल कर लिया इसने, क्या अमल भी कहीं दुनिया के लिए ही तो नहीं हो रहा, क्या लोगों को आगे पहुंचाने में भी, क्या यही तो नहीं है कि मुझे बैजेस मिल जाए, ये कितनी अच्छी वॉलंटियर थी, इसने काम बहुत ज्यादा किया, मुझे स्टेज पे बुलाया जाए, मेरा नाम लिया जाए, मेरी शोहरत हो जाए, मेरे ऊपर तालियां बज जाए, वो बच जाएंगी इस दुनिया में, शोहरत भी हो जाएगी, स्टेज पे भी बुला लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या है, कयामत के दिन जीरो ही नहीं है माइनस में है, क्योंकि आप वो हदीस आपको पता होगी ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन जिन लोगों का सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा उनमें एक आदमी वो भी है जिसने इल्म हासिल किया, लोगों को सिखाया और कुरान करीम को पढ़ता था, उसको लाया जाएगा और अल्लाह ताला नेमते गिनवाएगा उसको, मैंने तुझे ये दी दे, वो पहचान लेगा नेमतों को, अल्लाह ताला फरमाएगा तूने नेमतों के होते हुए क्या अमल किया, वो कहेगा मैंने इल्म हासिल किया, मैंने दूसरों को सिखाया, मैंने तेरी रजा के लिए अल्लाह कुरान को पढ़ा, अल्लाह ताला फरमाएगा तूने झूठ कहा, तूने इसलिए इल्म हासिल किया कि मुझे आलिम कहा जाए, तूने कुरान इसलिए पढ़ा कि तुझे कारी कहा जाए, तो ये हो गया, ये दुनिया में मिल गया जिसको जो मिलना था, जो नंबरों के लिए कर रहे हैं उनको दुनिया में नंबर भी मिल गए, जो सर्टिफिकेट के लिए कर रहा है उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे, यही चाहिए ना, मिल जाएंगे, लेकिन कयामत में कुछ नहीं है, फिर आखरत में कुछ नहीं है, क्योंकि ये हदीस बताती है कि फिर हुक्म दिया जाएगा कि इसको मुंह के बल घसीटा जाए, यहां तक इसको जहन्नुम में डाल दिया जाए, इतना नोबल काम है, इतना इज्जत वाला काम है, इतना बड़ा नेकी का काम है, लेकिन उस दिन इसी वजह से कुछ और ही कामों की वजह से वो ये करता रहा, किसी और ही चीज के पीछे वो भागता रहा, और रही उसकी नियत ही कुछ और, उसकी तलब ही कुछ और थी, उसका मकसद ही कुछ और था, उसकी हिरस ही किसी और चीज के लिए थी। तो वो तो ठीक मिल गई, वो तुम्हें मिल गई दुनिया में, यार अब जहन्नुम। इसके लिए तो इखलास चाहिए, सिर्फ पढ़ना सीखना काफी नहीं, जो पढ़ने सीखने वाले भी हैं यानी उनसे भी हिसाब होगा कि इखलास भी था कि नहीं था। तो हम इससे अब बड़ी जिम्मा नहीं हो जाएंगे कि हमने कोर्स कर लिया तो जी बड़े काफी हो गए हम। अब ये भी है इखलास के साथ किया था कि नहीं, क्या तुम्हारी मकसद क्या था, तुम्हें चाहिए क्या था, इससे तुम्हारी नजर किस चीज पे थी। वैसे हम सब कहते हैं कि नहीं 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 हम तो किसी और चीज के लिए, ना सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं ना किसी चीज के लिए कर रहे हैं, लेकिन हाँ नंबर नंबर तो मुझे जरूर चाहिए। तो देखें ये सब सवालात होंगे वहां पे, ये सब देखा जाएगा, और देखने वाला कौन है, वो जो अंदर तक की बातों को जानता है। मैं सेटिस्फाई हो सकती हूँ, कोई और सेटिस्फाई हो सकता है, हम किसी दुनिया वालों जितने भी लोग हैं उन सबको बड़े अच्छी तरह मुतमईन कर सकते हैं। मेरी नीयत तो बहुत अच्छी, और मैं तो बहुत ज्यादा अमल करने वाली, और मैं तो इतनी कुरान की बस सारा बात, कुरान ही तो कुरान होता है मेरी जुबान पे। लेकिन ये जिसकी अदालत में हमें खड़ा होना है ना, मुझे भी और आपको भी, उसकी नजर दिलों पे है, दिल में क्या था वो बहुत अच्छी तरह जानता है, उसको धोखा नहीं दे सकते, ये धूल झोंक सकते हैं इंसानों की नजरों में। या अल्लाह ताला के सामने हम सब नंगे हैं कि इंसान कोई चीज छुपा ना सकेगा। अभी भी हम अपनी नियतों का भी जायजा लें, अपने अमल का भी जायजा लें, अपने इस पढ़ने का भी जायजा लें, और क्या कोशिशें हमारी हो रही हैं इसको फैलाने में, उसका भी जायजा लें, क्योंकि वह सऊफ तुसअलून, तुमसे सवाल किया जाएगा। और जो नहीं बिल्कुल ही इस तरफ आ रहे, वो भी देख ले कि उसके बाद फिर कहीं ये ना हो कि शैतान साथी बन जाए, वो उसने फिर इस रास्ते को इतना मुश्किल बना देना है ना सिराते मुस्तकीम को, कि वो फिर और इंसान समझता रहे कि जी मैं बड़ा ठीक हूँ, उसका भी क्या अंजाम है, वो भी देख ले। तो इस अहमियत को समझे, सोचें ये मेरे लिए शर्फ है, ये तो मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अजीम तोहफा दिया, इसकी मैं ये कदरदानी कर रही हूं। कपड़ों की भी कदर है, चीजों और चीजों की भी कदर है, जेवरात की भी कदर है, और भी जितनी भी चीजें दुनिया की उनकी बड़ी कदर है, हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, कुरान कितना मिले उसमें मिनिमम तरीन सबसे छोटा कोर्स बता दें, जिसके अंदर कुछ भी ना टाइम देना पड़े, बस हफ्ते में जाके मुझे जरूरत जरा सी देर के लिए, वो भी बहुत है मेरे लिए। पैसों के लिए भी यही कहा करें, खाने पीने के लिए भी यही कहा करें, और चीजों के लिए भी यही कहा करें कि नहीं जी मुझे तो बस, और हाँ जो एंटरटेनमेंट है उसको भी कहा करें, कभी कभी मिल जाए तो ठीक है, नहीं वो हर हफ्ते होनी चाहिए, हर वीकेंड होनी चाहिए, वो इतने घंटों की तो जरूरी होनी चाहिए, बाकी चीजों के लिए क्यों नहीं हम कहते, इसमें क्यों मिनिमम पे राजी होते हैं। और बाकी चीजें उनको कोई एंड नहीं, वो तो 100 कपड़े भी मेरे पास होंगे तो मैं कहूंगी 102 होने चाहिए। अल्लाह ताला हमें माफ करे, बस अलमन अरसलना मिन कबलिका मैं रसूलिना, और पूछिए जिसको भेजा हमने आपसे पहले अपने रसूलों में से, अजालना मिन दूने रहमानी आलिहतन याबदून, क्या हमने उनको लिए बनाए रहमान के सिवा कुछ इलाज जिनकी बंदगी की जाए। आप पूछें पिछले रसूलों को भी तौहीद का ही पैगाम दिया गया, क्या उनको कोई और बताएगा कि किसी और को वो पूजे, नहीं पिछले रसूलों को भी यही कहा गया कि वो एक अल्लाह की इबादत करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पूछ सकते थे। असल में मुशरिकिन को समझाने के लिए भी बताया जा रहा है, दूसरे मेराज के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर सकते थे, तीसरे ये कि उनकी किताबों से पता चलता है कि उनको भी तौहीद का ही पैगाम दिया गया, वो भी एक अल्लाह की इबादत करते थे। अब आगे मूसा अलैहि सलाम और फिरौन का वाक्या जो हम कई दफा पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उसमें मुख्तसरन गुजरेंगे। वलकद अरसलना मूसा बिआयातिना इला फिरौन व मलेही, और अलबत्ता तहकीक, ये तीन ताकीदें वा, ल और कद। हमने भेजा, यकीनन हमने भेजा मूसा अलैहि सलाम को अपनी आयात के साथ। कौन सी आयात? यद बैजा और आसा। ठीक है, इन आयात के साथ फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा। फकाल इन्नी रसूल रब्बिल आलमीन, उन्हें जाके फरमाया कि मैं रसूल हूँ रब्बिल आलमीन की तरफ से, क्योंकि रब, फिरौन अपने आप को रब कहता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि वो जो आलमों का रब है मैं उनकी तरफ से रसूल हूँ। फलम जाए हम भी आया थी ना, फिर जब लाया उनके पास हमारी निशानियां, यानी मूसा अलैहि सलाम लाए, इजा हम मिनहा यसहकून, तो वो इस पे हंसते थे। हंसते क्यों थे? क्योंकि इंसान जब किसी चीज को हकीर करना चाहता है ना, तो तंज के तौर पे भी हंसता है और दूसरों को उससे हटाने के लिए भी हंसता है कि ये तो कोई चीज ही नहीं। तो उन्होंने इसको हंसी का निशाना बनाया, इस्तेहजा किया। जैसे आज भी लोग कई चीजों को अल्लाह के अहकाम के पर हंसने लगते हैं। व मानुरी हिमिन आयातिन इल्ला ही अकबर मिन उख्तिहा, और नहीं हम दिखाते उनको कोई निशानी मगर ज्यादा बड़ी होती थी अपनी बहन से। बहन का मतलब क्या? यानी पिछली निशानी से ज्यादा बड़ी होती। और ये निशानियां कौन सी थी? यानी मूसा अलैहि सलाम उनको पहले से कह देते थे कि अब तुम्हारे ऊपर तूफान आने वाला है, अब तुम्हारे ऊपर कहत आने वाला है, अब उसके बाद तुम्हारे ऊपर टिड्डियों का हमला होगा, अब इसके बाद तुम्हारे ऊपर मेंढकों का हमला, फिर उसके बाद तुम्हारे ऊपर खून का अजाब आएगा, फिर उसके बाद तुम्हारे ऊपर मतलब इस तरह से सुसरियों और जुओं का अजाब आएगा, जिनको अल्लाह ताला ने उसमें कुरान पाक में फरमाया, फरसलना अलैहिम तूफान अबल जराद अबल कुम्मल अव दफादे व दम आयात मुफसला। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ये सारे अजाब भेजे, और हर अजाब के ऊपर वो आते वक्त कहते थे कि ए मूसा तू दुआ कर तो हम इसके अंदर से निकल जाए। तो मूसा अलैहि सलाम की दुआ से वो उस हटा दिए जाते थे, लेकिन उसके बाद फिर वो लोग वही काम करते थे। वाखद ना हम बिल आदा बिल आल्ला हम यरजून, हमने उनको इन अजाबों में इसलिए पकड़ा ताकि वो लौट आए, लेकिन वो फिर भी रुजू नहीं करते थे। और वो क्या कहते थे? वकालू या यह साहिरू, तो वो कहते थे ऐ जादूगर उदू लाना, यानी मूसा अलैहि सलाम को जादूगर कहते थे। जादूगर इसलिए कि वो कहते थे कि एक तरह से उनको तंज करते थे कि तू तो जादू करने वाला है। उदू लाना रब्बा का, दुआ कर हमारे लिए अपने रब से, तो रब तेरा है। यानी अब ये नहीं कहते थे कि हमारा रब, नहीं जैसा हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, तू तेरा ही रब है, तू उसे दुआ कर। बिमा आहिदा इंदक, उस अहद की बिना पर जो उसने तुझसे किया। कौन सा अहद? या तो नबुवत मुराद है कि इस वजह से कि जो आपको अल्लाह ताला ने मकाम दिया है, या दूसरा मूसा अलैहि सलाम इसलिए करें कि अल्लाह ताला ने जो आपसे निजात का वादा किया हुआ, तो उस वजह से हमारे लिए दुआ कर। इन्ना ला मुहतदून, तो अलबत्ता हम हिदायत पाने वाले हैं, यानी हम हिदायत पे आ जाएंगे जब तुम दुआ करोगे। तो रोके, लेकिन उसके बाद क्या होता था? फलम्मा कशफना अनहुमुल अज़ाब इदा हुम यंकुसून, तो जब हम खोल देते थे उनके ऊपर से अजाब, ये हटा देते थे अजाब, तो वो फिर वही हरकतें करते थे। वनादा फिरआउन फी कौमी, और फिरौन को जब थ्रेट हुआ कि ये कहीं लोग मूसा अलैहि सलाम की तरफ ना हो जाए मायल, क्योंकि इनकी दुआओं से अल्लाह ताला अजाब हटा देता था, तो उसको ये खतरा पड़ गया कि ये ना हो कि ये लोग ईमान ही ले आए इनके ऊपर। तो उसने अपनी कौम को बुलाया, मुनादी की वहां पे, तो सारे जमा हो जाए, और उसने कौम से एक खिताब किया। क्या कहा? काला या कौम लैसा ली मुल्कु मिस्र, ए कौम क्या मेरे लिए नहीं है मिस्र की बादशाहत कि मैं जो मर्जी इसमें करूं, ये मेरी बादशाहत है यहाँ पे। वहाजी नहारु तजरी मिन तहती, और ये नहरें मेरे नीचे से बहती हैं, यानी मैं नहरों का भी मालिक हूँ, यहाँ नहरें मेरे कब्जे में है। अफला तुम सिरून, क्या फिर तुम देखते नहीं हो? क्या बताना चाह रहा है कि देखो मैं कितनी बड़ी चीज हूं, तो मैं बड़ा हूं। अम अना खैरु मिन हाजा, क्या फिर मैं बेहतर हूं? क्योंकि मेरे पास पावर है, मेरे पास बादशाहत है मिस्र की, और मेरे मेरे कहने के ऊपर नहरें बह रही हैं, यानी मेरे कहने पे तो नहीं, लेकिन मेरे कब्जे में ये नहरें हैं, तो मैं बेहतर हूं या ये अल्लदी हुआ महीन, जो हकीर है? किसको कह रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम को। वला यकादु युबीन, और अपनी बात भी वाजे तौर पे नहीं कर सकता, क्योंकि बाज़ तफसीरों में मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में चूंकि लुकनत थी, इसलिए वो कहने लगा, और वो बचपन में थी, तो अब वो उसका ताना दे रहा है कि ये बेहतर है हमें, यानी उसने भी किस चीज से अपना कंपेरिजन किया जो हमने पहले बात की थी कि माल और बादशाह तो मेरे पास है, तो मैं बेहतर हूं कि ये बेहतर है, हालांकि उनके पास नबूवत थी जो हर माल और हर उससे बेहतर है। फलौला उल्किया अलैहि अस्विरतुम मिन ज़हबिन, जाए माहुल मलाइकातु मुकतरिनीन, क्या क्यों नहीं इसके ऊपर उतरते कंगन सोने के इसके ऊपर आते, या फिर इसके साथ फरिश्ते होते जो प्रोटोकॉल के साथ इसके आगे पीछे होते और फरिश्ते इसके साथ चल रहे होते, और ये को बड़ी चीज होता है, यानी उसके नजदीक ये था कि सोने के कंगन उस वक्त बादशाह पहना करते थे, तो क्यों नहीं इसके पास सोने के कंगन है या इसके साथ फरिश्ते हैं, क्योंकि यही चीजें उनके नजदीक बड़ी थी। फस्तखफ्फा कौमहू फअताउहू, तो उसने अपनी कौम को हल्का पाया, हल्का पाने से यहाँ पे मतलब क्या है, यानी अपनी कौम को बेवकूफ बना लिया, एक तो ये इसका मतलब है कि बेवकूफ बना लिया, या ये कि कौम को उसने बेवजन कर दिया, कोई उनकी हकीकत उनकी राय को बेवजन कर दिया, उनको सोचने का मौका तक नहीं दिया, उनकी उनको बेवकूफ बनाया ना जैसे, तो फअताउहू, तो उन्होंने उसकी इताअत कर ली, वो भी सोचे समझे उसके पीछे चल पड़े। तो एक तो माना कि उसने अपनी कौम को बेवकूफ बनाया, दूसरा माना अपनी कौम को आसानी से अपना ताबे बना लिया। इससे हमें पता चलता है कि एक लीडर जो होता है अगर वो बिगड़ा हुआ है तो अक्सर जो कौमें होती हैं अपने लीडर को देख के चलती हैं और अंधी हो जाती हैं, ये नहीं सोचती कि ये सही भी हमें कह रहा है या नहीं, ये हमें सही तरह रास्ते पे भी लेके जा रहा है या नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम हमें क्या कह रहे हैं और हम इसके रास्ते जाए, वो अंधाधुंध उसके पीछे चल पड़े। इन्नाहुम कानू कौमन फासिकीन, बेशक वो थे ही फासिक कौम, वो खुद ही फासिक थे, वो खुद नाफरमान थे, इसीलिए वो इसके कहने पे चले, वरना जरा भी अपनी अकल इस्तेमाल करते तो इसके रास्ते पे ना जाते कभी। फलम्मा सफूना, तो जब वो गुस्से मिलाए हमको, इंतकमना, तो हमने इंतकाम ले लिया, मिनहुम उनसे, फगरकना हम अजमाइन, तो हमने गर्क कर दिया उन सब के सबको। आप देखें कितनी दिलचस्प बात है ना, कि उसी फिरौन ने कहा था कि हाजिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये तो नहरें मेरे कब्जे में मेरे हुक्म से हैं, तो उसी नहर के अंदर वो गर्क हुआ, इसके कब्जे में होती तो वो उसमें गर्क तो ना होता। अल्लाह हु अकबर, जब वो अपने करतूतों से हटे नहीं वो, अल्लाह ताला ने उनसे इंतकाम ले लिया। फजअलनाहुम सलफन, तो बना दिया हमने उनको पेश रो, यानी भूली बिसरी दास्तान, गए गुजरे लोग, पिछले लोग गुजर चुके, जो यानी वो सरवाइव भी नहीं कर सके, अब जो अपने आप को इतना बड़ी चीज कहता था। वह मसल लिल आखिरीन, और बाद वालों के लिए उनके अंदर एक मिसाल छोड़ दी अल्लाह ताला ने कि देखो इनका अंजाम कैसे होता है जो ऐसे तकबर करते हैं और जो अंबिया की तालीमात को पीछे डालते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين